लोकतंत्र की आलोचनाओं का मूल्यांकन। निसंदेह उपयुक्त आलोचनाओं में से अनेक कुछ न कुछ सही है, पर अधिकतर वे केवल एक व्यंग्यचित्र ही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई आलोचनाएं एक दूसरे के विपरीत हैं और इस तरह एक दूसरे को रद्द करती हैं। कुछ लेखक लोकतंत्र को वीर पूजा तथा मूर्ति पूजा बतलाते हैं और कुछ दूसरे लेखकों के अनुसार उसका मतलब है अवज्ञा और अराजकता। एक और कुछ आलोचक कहते हैं कि लोकतंत्र आदर्शवाद और सूक्ष्म सिद्धांत का उपासक है, तो दूसरी ओर कुछ अन्य लेखकों का आरोप है कि लोकतंत्र में भावनाओं और सिद्धांतों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इन पारस्परिक विरोधी आरोपों में ही एक दूसरे का खंडन छिपा हुआ है। पहला, यदि लोकतंत्र एक दोषपूर्ण शासन प्रणाली है तो यह पूछा जा सकता है कि दूसरा रास्ता क्या है। क्या कोई ऐसी दूसरी शासन प्रणाली है जो यदि लोकतंत्र से ज़्यादा अच्छी ना हो तो कम से कम उतनी ही अच्छी हो? हमारा उत्तर नहीं में है। संसार में कुलीन तंत्र और अल्पतंत्र की परख समय समय पर की गई है और उन्हें आमतौर पर विफल पाया गया है। हम सब उन तक वापस नहीं जा सकते क्योंकि सीडी बर्न्स के प्रभाव शब्दों में कोई भी इस बात को अस्वीकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाएं दोषपूर्ण हैं। पर यदि एक मोटर कार ठीक ढंग से काम नहीं करती तो उसे के स्थान पर बैलगाड़ी को स्वीकार करना मूर्खता है। दूसरा, अभी इस योग्य नहीं है कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसका बहुत समय से दार्शनिक और अराजकतावादी स्वप्न देखते आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से प्रवृत्ति अधिनायकवाद की और बढ़ी है। अधिनायकवाद से चाहे जितनी अच्छाइयां हो, पर यह तो मानना पड़ेगा कि उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पहल का अभाव रहता है और इस कारण वह व्यक्तित्व के विकास के प्रतिकूल है। इस जिसे हम मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य मानते हैं। अधिनायकवादी शासन सभी प्रकार की आलोचनाओं को दबा देता है। वह उन सभी संगठनों को कुचल देता है जो खुद अपने में नहीं होते। दूसरा, लोकतंत्र आजकल उन अनेक बुराइयों के लिए दोषी ठहराया जाता है जो पिछले दो महायुद्धों से पैदा हुई। इस सदी के तीसरे दशक की मंदी व बेकारी और आज की मुद्रा स्फीति और महंगाई का कारण संसार की अव्यवस्थित परिस्थितियां हैं, जिनके लिए अकेले लोकतंत्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संसार की वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक दुर्व्यवस्था में लोकतंत्र के गुणों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तीसरा, हेगवे लोकतंत्र को जीव विज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत बतलाते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में मस्तिष्क को सामाजिक संगठन में कहीं भी किसी भी अंग में खोज निकालने की आशा की जाती है। यह आलोचना स्वस्थ नहीं है। लोकतंत्र अधिकार सत्ता को बर्बाद करने को नहीं कहता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुव्यवस्थित लोकतंत्र में सुव्यवस्थित कुलीन तंत्र के लिए भी स्थान रहता है। मैजेनी का कहना है, लोकतंत्र में सबसे अच्छे और सबसे अधिक बुद्धिमान लोगों के नेतृत्व में सबकी उन्नति होती है। आधुनिक लोकतंत्रीय राज यह महसूस करते हैं कि शासन एक कला है और यह कार्य उन्हीं लोगों को सौंपा जा सकता है जो इसकी विशेष योग्यता रखते हैं। हम दोहराना चाहते हैं कि लोकतंत्र में विशेषज्ञों द्वारा शासन किए जाने की व्यवस्था के लिए स्थान है। कुलीन तंत्र में विशेषज्ञ अपने आप को जनता से दूर रखता है। लोकतंत्र में उससे उन सामाजिक सद्गुणों की आशा की जाती है जो उसे उन लोगों को अपना मानने में समर्थ बना सके जिन पर उन्हें शासन करना होता है। यह कहने की जरूरत नहीं कि लोकतंत्र कुलीन तंत्र के इस अंतर में लोकतंत्र का ही पलड़ा भारी पड़ता है। ब्रिटिश लोकतंत्र में योग्य और समर्थ व्यक्तियों की बहुतायत है। यद्यपि ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शासन को बहुधा नौसखियों का शासन कहा जा सकता है। ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उस सब को ध्यान में रखते हुए हम लोकतंत्र को एक अयोग्य शासन प्रणाली मानने को तैयार नहीं। जीवन विज्ञान और मानव विज्ञान के आधार पर बनी इस धारणा के बारे में कि लोकतंत्र गोरी जातियों का विशेष गुण है, मैक्सी का यह कथन बिल्कुल ठीक ही है। इस बात का कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि गोरी जातियां राजनीतिक प्रतिभा में या अन्य किसी बौद्धिक विशेषता में काली, पीली या भूरी जातियों से श्रेष्ठ होती है। प्राचीन भारत और चीन ने स्थानीय स्वशासन की पद्धतियों का सुंदर विकास और संचालन किया था। चौथा, जो लोग लोकतंत्र के कट्टर विरोधी हैं वे साधारण जनता का तिरस्कार करते हुए कहते हैं कि जनता अपना शासन अपने आप कर सकने में असमर्थ है। हम यह नहीं मान सकते। हम यह स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र में हमेशा ठीक ही व्यक्ति नेता नहीं चुना जाता, पर इसके लिए जनता को ही सारा दोष नहीं दिया जा सकता। अयोग्य नेताओं के चुने जाने का आंशिक कारण लोकतंत्र के बजाय एक तंत्र को हो सकता है। समाज में अब भी संपत्ति, शक्ति और पद को प्रतिष्ठा का कारण माना जाता है। इसका इलाज लोकतंत्र को कम करना नहीं बल्कि उसे और अधिक बढ़ाना है। समर्थ व्यक्तियों के नेता ना चुने जाने का एक और कारण यह है कि उनमें सामाजिक विनम्रता की कमी होती है और वे अपनी बात जनता को समझाने योग्य सरल नहीं बना पाते। सी डी बंस कहते हैं, प्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए कि उसे समझा जा सके। यदि वह समझदार भी हो तो यह सौभाग्य की बात है, पर उसे समझा जाने लायक तो होना ही चाहिए। यह सोचना भूल है कि लोग हमेशा गलत आदमियों को ही चुनते हैं। लोकतंत्रीय देशों का अनुभव यह साबित करता है कि निम्नलिखित बातों पर जनता अधिक सही निर्णय देती है। क, कार्रवाइयों की अपेक्षा मनुष्यों के संबंध में। ख, आदेश मूलक कार्रवाइयों की अपेक्षा निषेधात्मक कार्रवाइयों के संबंध में। ग, उन प्रश्नों के संबंध में जो तकनीकी और विवरण युक्त मसलों की अपेक्षा सामान्य नीति से संबंधित होते हैं। घ, भावनाओं को जगाने वाले प्रश्नों की अपेक्षा ऐसे मसलों के संबंध में जिनमें नैतिक सिद्धांतों की बात होती है। यदि हम चाहते हैं कि जनता समझदारी से चुनाव करे तो हमें एक समय में ही एक ही प्रश्न उसके सामने रखना चाहिए और इस प्रश्न को सीधे साधे सरल शब्दों में जनता को समझाना चाहिए। अनेक विवरणों और तकनीकी बातों से जनता को लादना उचित नहीं। जो लोग यह कहते हैं कि साधारण मनुष्य को अपना शासन स्वयं करने में रुचि नहीं होती और लोकतंत्र में सबसे बुरी बुराई मतदाता की उदासीनता है, उसमें हम यह नहीं कह सकते कि दूसरी शासन पद्धतियों में भी जो परिणाम निकलते हैं वे लोकतंत्र के परिणाम से अच्छे नहीं होते। यदि लोकतंत्र में जनता कभी कभी उदासीन रहती है तो कभी कभी यह बहुत सक्रिय और निष्ठावान भी हो जाती है। पांचवा, यद्यपि लोकतंत्र में कुछ आधुनिक आलोचक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बुरा कहते हैं, फिर भी वे अपने मस्तिष्क को उससे भलीभांति मुक्त नहीं कर पाए। कोई भी प्रसिद्ध विचारक आज शुद्ध एकतंत्र को उचित कहने के लिए तैयार नहीं है। यह ध्यान देने योग्य शिक्षाप्रद बात है कि अधिनायक तंत्र के बहुत बड़े समर्थक भी इसका औचित्य इस आधार पर ही बताते हैं कि वह जनता का सही सही प्रतिनिधित्व करता है। हम उनके इस कथन से सहमत हों या ना हों, पर यह सिद्धांत आज के राजनीतिक दर्शन का एक स्थायी अंग बन चुका है कि अधिकार सत्ता का आधार प्रतिनिधित्व ही होना चाहिए। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर प्रश्न यह उठता है कि जनता के प्रतिनिधित्व का सबसे अधिक सफल तरीका क्या है। हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते कि अधिनायक तंत्र जनता का सच्चा प्रतिनिधि है, विशेषकर जब हम यह देखते हैं कि उसमें आलोचना और स्वतंत्र विचारों को कुचल दिया जाता है। छठवां, इस आरोप का कि लोकतंत्र में पार्टी का शासन जरूरी होता है और पार्टी प्रणाली की राय जानने का एक असंतोषजनक तरीका है, हमारा उत्तर यह है क लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां अनिवार्य हैं, क्योंकि उनके बिना लोकतंत्रीय सरकार का चलना असंभव है। पार्टियां अव्यवस्था में व्यवस्था कायम करती हैं, वे लोकमत का निर्माण करती हैं और उसे शिक्षित करती हैं। जैसा कि ब्राइस का कहना है कि जिस प्रकार ज्वार भाटे की लहरें सागर की लंबी लंबी खारियों के जल को स्वच्छ रखती हैं, उसी प्रकार राजनीतिक पार्टियां राष्ट्र के दिमाग को सजग और स्वच्छ रखती हैं। ख, ब्राइस के शब्दों में ही पार्टी का अनुशासन स्वार्थ परता और भ्रष्टाचार को रोकता है। लोकतंत्र का मतलब कुशिक्षा है। इस आरोप का तथ्यों के आधार पर शायद कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। लोकतंत्र में जनता से बहाने किए जाते हैं और उसकी खुशामद की जाती है। जनता को खुश करने के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं किया जाता। लोग अपने आप को कला विज्ञान और साहित्य का पारंगत मानने लग जाते हैं। ये सब आरोप ठीक है, पर प्रश्न यह है कि इनसे बचने का रास्ता क्या है। दूसरी शासन प्रणालियों में तो जन शिक्षा का इससे भी कम अवसर रहता है। जनता की कुशिक्षा को उसके भीतर शिक्षित किए जाने की इच्छा पैदा कर कर्मशः दूर किया जा सकता है। इस दिशा में प्रगति होती दिखाई पड़ने लगी है। लोकतंत्र के विरोधियों के इस आरोप को हम स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र में धन का बहुत अधिक अपव्यय और बर्बादी होती है, पर हमारा कहना यह है कि यह बुराई लोकतंत्र में लाजमी नहीं है। इस बुराई को दूर किया जा सकता है। लोकमत के शिक्षित हो जाने से यह बुराई बहुत अधिक अंशों में समाप्त हो जाएगी। आठवां, अपव्यय और बर्बादी के साथ साथ अधिकांश लोकतंत्रीय राज्यों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार बहुत पाया जाता है, पर इन बुराइयों को हम देश के सार्वजनिक जीवन को दोष नहीं देना चाहिए, ना कि केवल शासन प्रणाली को। लॉवेल का कहना है कि व्यापारिक जीवन में जिन बुराइयों को हम सहन करते हैं उनके लिए हम लोकतंत्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उचित और अनुचित हमेशा रहे हैं और रहेंगे। सार्वजनिक जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का अभाव कोई नई बात नहीं है। 18वीं सदी के यूरोप में पदाधिकारियों में जितना भ्रष्टाचार था उसकी अपेक्षा आज निस्संदेह कम है। जनप्रिय सरकारें भ्रष्टाचार से तब तक बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकती जब तक राह चलते साधारण नागरिक का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होता और भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता। नौवां, आजकल चिल्ला चिल्ला कर यह कहना एक फैशन सा हो गया है कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। संभव है कि अनेक फैशनों की तरह इस फैशन का भी कोई ठोस आधार ना हो। उस समय तक अधिनायक तंत्र को आजमा लेने के बाद स्पेन लोकतंत्र को वापस ले आया। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में जहां लोकतंत्र का विकास हुआ है और वह एक लंबे समय से सफलतापूर्वक अमल में लाया जा रहा है, उसे छोड़ देने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। अधिनायक तंत्र के प्रति उत्साह केवल यही संकेत करता है कि लोकतंत्र को अपने आप को बदलती हुई हालातों के अनुसार बनाना चाहिए। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे मोरुआ का कहना है कि यदि कोई देश संसदात्मक शासन के अधीन है तो इसका मतलब यह नहीं कि एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह एक व्यक्ति के नेतृत्व को निश्चित समय के लिए स्वीकार न करे। लोकतंत्र को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का अर्थ यह नहीं है कि अधिनायक तंत्र के लिए दरवाजा खोल दिया जाए, बल्कि उसका मतलब यह है कि अधिनायक तंत्र का रास्ता बंद कर दिया जाए। जैसा कि डॉक्टर एडी लिंडसे ने कहा है, अपने में विश्वास रखने वाला एक लोकतंत्रीय समाज अपनी कार्यप्रणाली से बहुत अधिक नम्य हो सकता है। वह जरूरत के अनुसार अपनी प्रणाली में परिवर्तन कर सकता है। वह अपनी सरकार के हाथों में अपरिमित शक्ति दे सकता है, जैसा कि संकटकाल में किया जाता है, और खुशी खुशी इस विश्वास के साथ दे सकता है कि संकटकाल समाप्त हो जाने पर वह उन अधिकारों को वापस ले सकता है। ब्रिटेन में चर्चिल और अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने थोड़े ही समय में जो अपरिमित शक्ति पाली थी और उनके देशवासियों ने शांति और विश्वास के साथ उनके अधिकारों को बढ़ावा मान लिया, वह देशवासियों की कमजोरी का नहीं बल्कि उनकी शक्ति और लोकतंत्र पे उनका विश्वास का सबूत है। लगभग यही बात जवाहरलाल नेहरू के संबंध में भी कहा जा सकता है, जिन्होंने वर्षों तक भारतीय जनता पर विलक्षण प्रभाव डाला था। दसवां, कुछ लोगों का कहना है कि लोकतंत्र एक कोरी कल्पना है। वास्तव में संसार में लोकतंत्र जैसी कोई चीज ही नहीं है। इस आलोचना का एक संभव उत्तर यह है कि मनुष्य कल्पनाओं के सहारे ही जीते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर लोकतंत्र प्राकृतिक अधिकार, मनुष्य की समानता और लोक संपत्ति की कल्पनाओं के सहारे ही क्यों न जिया जाए। डेवी कहते हैं, लोकतंत्र की नींव मानव प्रकृति की क्षमताओं में विकास, मानव बुद्धि में विश्वास और संचित तथा सहयोग मूलक अनुभव की शक्ति में विश्वास है। उपचार तथा निष्कर्ष, हम इस नतीजे पर पहुंचना ही पड़ता है कि लोकतंत्र का केवल आपेक्षिक महत्व है। संसार की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए वह कोई रामबाण नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई केवल अपरिपक्वता के कारण है और अनुभव बढ़ने के साथ साथ वे दूर हो सकेगी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्व नैतिक और शैक्षिक है। मानव व्यक्तित्व के महत्व रूपी जिस आधार पर लोकतंत्र टिका हुआ है वह अटल है। हमारा विश्वास है कि टोकुविल का कथन सही है, लोकतंत्र की प्रगति अनिवार्य प्रतीत होती है क्योंकि यह इतिहास में मिलने वाली सबसे अधिक एकरूप प्राचीन और स्थायी प्रवृत्ति है। एक आधुनिक लेखक का कहना है कि एक विचार के रूप में लोकतंत्र सामाजिक जीवन के अन्य सिद्धांतों का विकल्प नहीं, स्वतंत्र व समृद्ध समागम ही लोकतंत्र है। हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र एक सही व्यवस्था है जिसमें एक स्वस्थ सिद्धांत निहित है। हमें उसमें जो दोष दिखाई देते हैं वे ऐसे नहीं कि जो इन्हें दूर ना किया जा सके। शिक्षा, चिंतन और अनुभव द्वारा जनता उन दोषों को स्वयं दूर कर सकती है। हम उन लोगों से सहमत नहीं हैं जो यह समझते हैं कि लोकतंत्र के दोषों को दूर करने का एक ही मार्ग है, लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया जाए। यदि किसी चीज के समाप्त किए जाने की जरूरत है तो वह है मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को। इसे इन तरीकों से दूर किया जा सकता है। एक प्रभावशाली विश्व सरकार, एक सुनियोजित अर्थनीति, निःशस्त्रीकरण एवं आयात निर्यात करों एवं जातीय विभेदों का अंत। यदि लोकतंत्र को समाप्त करने के बजाय उसे और सही अधिक रूप से लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है और हमारा विश्वास है कि ऐसी जरूरत है कि तो प्रश्न यह है कि इसके लिए निश्चित तरीके क्या हैं। अनेक लेखकों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। कुछ लोगों ने सार्वजनिक शिक्षा और चरित्र सुधार को लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी माना है। दूसरे लोगों का कहना है कि लोकतंत्र को बदली हुई हालातों के अनुकूल बनाने के लिए उसकी कार्यप्रणाली में कुछ निश्चित सुधार किए जाने चाहिए। ये सुधार क्रमशः नैतिक व यांत्रिक सुधार कहे जा सकते हैं। पहले हम उन लेखकों के सुझावों पर विचार करेंगे जो नैतिक सुधारों पर जोर देते हैं। प्रोफेसर हनसा निम्नलिखित बातों को आवश्यक मानते हैं। पहला, ऊंचे दर्जे की ईमानदारी, आत्मगौरव और नैतिकता एकदम जरूरी है। जब तक लोगों के, विशेषकर नेताओं के कार्य व भावनाएं अच्छी ना होंगी, लोकतंत्र की विफलता निश्चित है। एक भ्रष्ट लोकतंत्र सभी प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों से गया बिता और बहुत ही बुरा होता है। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि जनता में अपनी सच्चाई के लिए गर्व हो, आत्मनिर्भरता का संकल्प हो और आत्मगौरव का विभिन्न विनर्म भावना हो। सामान्य लोगों में ईमानदारी और न्यायप्रियता का होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार, समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। दूसरा, ऊंचे स्तर की बुद्धिमत्ता और स्वस्थ शिक्षा पद्धति भी वांछनीय है। साधारण बुद्धि का अभाव लोकतंत्र के लिए बाधक सिद्ध होता है। सामान्य जनता में यदि साधारण न्याय बुद्धि ना हो तो लोकतंत्र या तो भीड़ का शासन बन जाएगा या वह हमें अधिनायकवाद की ओर ले जाएगा। मूर्ख, सज्जन, चतुर दुष्टों से भी गए बीते होते हैं। यदि हमें लिंकन के इस कथन को सत्य बनाना है कि जनता के कुछ अंश को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सारी जनता को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं पर सारी जनता को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते, तो हमें सार्वजनिक शिक्षा की एक स्वस्थ प्रणाली की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, एक सुस्पष्ट सामाजिक चेतना के लिए लोकतंत्र में परस्पर संगठित होने की प्रबल भावना, एकता में गंभीर विश्वास और सामाजिक जीवन को एक व्यापक भावना बहुत जरूरी है। जातीय विदेश, धार्मिक विवाद, वर्ग संघर्ष और सामाजिक अंतर लोकतंत्र को कमजोर बनाते हैं। यह कथन लोकतंत्र पर जितना अधिक लागू होता है उतना किसी और पर नहीं कि भेड़िए की शक्ति झुंड में है और झुंड की शक्ति भेड़िए में है। चौथा, स्वस्थ लोकमत एक जागरूक सामाजिक चेतना और प्रभावपूर्ण लोक सम्मति का भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लोकतंत्र और लोकमत का बहुत नज़दीकी संबंध होता है। लोकतंत्र का स्तर लोकमत ही पर निर्भर करता है। लोकतंत्र तत्कालीन लोकमत की अपेक्षा ना तो बहुत ही अच्छा हो सकता है और ना ही बहुत बुरा। इसलिए जब कभी और जहां कभी भी लोकमत विभाजित होता दिखाई दे, उसकी विफलता का एक प्रधान कारण अस्वस्थ और प्रभावहीन लोकमत होता है। इन शर्तों के साथ हम एक और भी शर्त जोड़ सकते हैं, पांचवा, राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और औद्योगिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो मनुष्य के सामाजिक संबंध और आर्थिक जीवन भी लोकतंत्रीय होना चाहिए। मैक्सी ठीक ही कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र के भीतर या उसके समानांतर औद्योगिक लोकतंत्र भी कायम किया जाना चाहिए। J.W. गार्नर का कहना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ये बातें अनिवार्य हैं। पहला, उच्च कोटि की राजनीतिक समझदारी, सार्वजनिक मामलों में स्थायी रुचि, सार्वजनिक जिम्मेदारी की तीव्र भावना और बहुमत के निर्णयों को स्वीकार करने और उनका पालन करने की तत्परता, और इनके साथ ही बहुसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। दूसरा, आरंभिक शिक्षा की सुविधाएं। तीसरा, राजनीतिक विषयों की शिक्षा और सरकारी कार्यप्रणालियों का प्रशिक्षण। चौथा, उच्च कोटि की नैतिकता। प्रोफेसर W.E. हॉकिंग्स इस बात को इस प्रकार कहते हैं, पहला, जनता की शिक्षा, कार्यकुशलता और उसके प्रशिक्षण का जो स्तर होता है उससे ऊंचा लोकतंत्र का स्तर नहीं हो सकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए ऊपरी समिताओं में अंतर्निहित तत्वों को सोचने समझने की क्षमता आवश्यक है। दूसरा, सच्चाई और सही तथ्यों के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए विचारों की मलिनता को दूर करके हम अपने विचारों को शुद्ध कर अपना लक्ष्य सत्यम शिवम और सुंदर बना सकते हैं। तीसरा, लोकतंत्र जनता की सदिच्छा पर निर्भर है। लोकतंत्र जनसमूह के लिए संभव है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर यह प्रश्न है कि जनसमूह के लिए विनम्रता संभव है या नहीं, और विनम्रता जनसमूह के लिए संभव है या नहीं, इसका उत्तर इस प्रश्न के रूप में दिया जा सकता है कि जनसमूह के लिए धर्म संभव है या नहीं, क्योंकि धर्म मनुष्य को निरंतर उसकी अपूर्णता की याद दिलाता रहता है। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र के लिए जनता में विनम्रता की भावना शिक्षित किए जाने की इच्छा अनिवार्य है और इसके लिए धार्मिक भावना की जरूरत है। चौथा, नेताओं का जनता में विश्वास होना लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति और नेता जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी सनकी होता जाता है। अनेक बातें ऐसी होती हैं जिनसे उसकी आस्थाओं को धक्का लगता है। यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो उसे मनुष्य के वास्तविक रूप को अपने आधार पर न बनाकर उसके आदर्श रूप को अपना आधार बनाना चाहिए। इसका मतलब है विश्वास और निष्ठता। लोकतंत्र धर्म और विश्वास की एक अंतःधारा के बल पर ही फल फूल सकता है। A.L. लॉवेल लोकतंत्र के लिए आवश्यक बातों का निष्कर्ष इन शब्दों में देते हैं, किसी प्रकार की भी शासन व्यवस्था का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर पाती है जो उसे आगे चला सके, और किस हद तक वह नेतृत्व के लिए सबसे अधिक समर्थ व्यक्तियों को आगे ला पाती है। क्या लोकतंत्र में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की प्रवृत्ति है जो अपने आर्थिक हितों की अपेक्षा सार्वजनिक कल्याण को अधिक महत्व दे सके, जिसके विभिन्न वर्गों में ईर्ष्या की भावना न होकर परस्पर सहानुभूति हो, जो भावी कल्याण के लिए वर्तमान कठिनाइयों को दूरदर्शिता और साहस के साथ झेल सके? क्या लोकतंत्र अपने जनप्रतिनिधियों और मजिस्ट्रेटों के पदों पर ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिनमें ये सब गुण विद्यमान हैं, और यदि लोकतंत्र यह सब करता है तो भी तूफान उठेंगे, वे उनकी जड़ों को ना हिला सकेंगे और वह अडिग रहेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका आधार अस्थिर समझना चाहिए। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए जो अमली सुझाव दिए गए हैं उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। लॉर्ड लोडियन का कहना है, सरकार का शासन तंत्र व्यक्ति को भाषण स्वतंत्रता और आलोचना तथा आर्थिक पहल की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। दूसरा, वयस्क निर्वाचक समुदाय के निर्णय पर सरकार बिना किसी खून खराबी के बदली जा सकती है। आंद्रे मोरवा तानाशाही को रोकने के लिए एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित अवधि तक एक व्यक्ति के नेतृत्व का सुझाव देते हैं। लॉर्ड यूस्टेस पर्सी का दावा है कि ब्रिटेन का संविधान राजतंत्रात्मक प्रधानमंत्रित्व द्वारा अपनी रक्षा करता है। जिस दिन प्रधानमंत्री पार्टी सत्ताधारियों के दबाव में आ जाएगा उसी दिन अधिनायक तंत्र से बचने के लिए कोई रास्ता बाकी न रह जाएगा। इसलिए पार्लियामेंट का मुख्य और प्रथम कर्तव्य यह है कि वह सशक्त प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्रियों की स्वतंत्रता संसद की स्वतंत्रता और उनकी शक्ति उसकी शक्ति है। लॉर्ड पर्सी के अन्य सुझाव ये हैं। पहला, संसद को नीति संबंधी व्यापक प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, छोटे छोटे विवरणों से नहीं पढ़ना चाहिए। उसे कर लगाने और व्यय करने की व्यवस्था पर नीति संबंधी व्यापक प्रश्नों के रूप में विचार करना चाहिए, और अनुचित व्यय और करों से पैदा होने वाली शिकायतों को पेश करना चाहिए। संसद को अपनी उस बेतुकी प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए जिसके अनुसार प्राय सभी साधारण विवादों में विधान से संबंध रखने वाले प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। दूसरा, विधेयकों की रचना में संसद को पहल करनी चाहिए। कानून के निर्माण में संसद को सरकारी विभागों पर बहुत अधिक निर्भर रहना चाहिए, और इस काम के लिए संसद की कई समितियां बना लेनी चाहिए। इन समितियों को केंद्रीय व स्थानीय सरकार और व्यक्तियों के बीच संबंधों पर विचार करना चाहिए। तीसरा, विशिष्ट विभागों के प्रशासकीय कार्य का निरीक्षण करने के लिए विभागीय आज्ञाओं और विज्ञापनों की जारी होने से पहले उनकी जांच करने के लिए, व्यक्तिगत शिकायतों का पता लगाने के लिए, और मंत्रियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने के लिए संसद की समितियां बनाई जानी चाहिए। चौथा, राजा द्वारा मनोनीत सदस्यों की एक अर्थ परिषद होनी चाहिए जो यथासंभव आर्थिक समिति के बजाय आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सके, और सरकार और संसद को अपने विधान निर्माण की तैयारी में इस परिषद का उपयोग करना चाहिए। इस परिषद को सरकार और उद्योग के पारस्परिक संबंधों की पूरी पूरी जांच करनी चाहिए। सर स्टेवर्ट किफ्स ने अपनी पुस्तक संसद का आदर्श स्वरूप लोकतंत्र में अलिखित तीन गुण बताए हैं। पहला, जनता को अपने प्रतिनिधियों के चुनने की पूरी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जनता को निर्धारित समय पर अपने प्रतिनिधियों के प्रत्यावर्तन या बुलाने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, जनता को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि कौन सी नीति लागू करनी चाहिए। तीसरा, प्रतिनिधियों में इतनी योग्यता और सामर्थ्य होनी चाहिए कि वे वांछित नीति को अनावश्यक देरी किए बिना और किसी भी हित या व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना सफलतापूर्वक लागू कर सके। लोकतंत्र के इन व्यवहारिक गुणों को कार्य रूप देने के लिए स्टेफर्ड किश निम्नलिखित बातों की सिफारिश करते हैं। पहला, विधान निर्माण की 19वीं सदी वाले मंदगामी सरीखों को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा, कॉमन सभा जब उसे देश का समर्थन प्राप्त हो, एक साहसपूर्ण नीति को अपनाया जाना चाहिए और अलोकतंत्रीय दूसरे सदन की धमकी में न आकर देश की विकास की प्रगति और पद्धति का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जाना चाहिए। तीसरा, मंत्रियों के विधायी तथा प्रशासकीय कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कार्याधिकारी परिषदों का निर्माण करना। लोकतंत्र के गुण देशों का विवेचन हम कर चुके, अब हम उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तंत्र है।